एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, फिल जैक्सन की 11 रिंग्स, द सोल ऑफ सक्सेस, हिंदी में कहें तो 11 अंगूठियां सफलता का सार।
जी हाँ, और फिल जैक्सन मतलब एनबीए के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा सम्मानित और सफल कोच।
बिल्कुल, 11 NBA चैंपियनशिप्स शिकागो बुल्स और लॉस एंजलिस लेकर्स के साथ, ये आंकड़ा ही मतलब दिमाग घुमा देता है।
हाँ, ये सच में असाधारण है। लेकिन देखिए, ये किताब सिर्फ उन 11 जीतों का लेखा जोखा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
अच्छा, किस तरह से?
असल में ये इस बारे में है कि उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की। उनका तरीका जो था वो बिल्कुल हटके था, आम कोचों जैसा नहीं।
हाँ, सुना है उन्हें जेन मास्टर भी कहते थे।
बिल्कुल सही, उन्होंने अपनी कोचिंग में जेन बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ध्यान यानी माइंडफुलनेस, और यहाँ तक कि टीम मनोविज्ञान को भी शामिल किया। ये उस समय के लिए तो बहुत ही अपरंपरागत था।
तो क्या ये किताब सिर्फ बास्केटबॉल या स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों के लिए ही है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, ये किताब असल में लीडरशिप के बारे में है, किसी भी फील्ड में। कैसे आप बहुत प्रतिभाशाली और हाँ, अक्सर बड़े ईगो वाले लोगों को एक साथ लाते हैं।
हाँ, ये तो हर जगह की चुनौती है, ऑफिस में, किसी प्रोजेक्ट पर।
बिल्कुल, कैसे एक सच्ची टीम बनाते हैं जिसमें तालमेल हो, और कैसे आप मतलब सचेत रहकर वर्तमान पर ध्यान देकर लीड करते हैं। ये सचेत नेतृत्व या माइंडफुल लीडरशिप आज के जमाने में बहुत जरूरी है, जहां हम अक्सर सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हैं।
सही कहा। तो चलिए जैक्सन की इस यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनकी शुरुआत कैसी रही, क्या चीजें थी जिन्होंने उन्हें बनाया?
उनका बचपन काफी अलग माहौल में बीता। उनके माता पिता पेंटेकोस्टल मंत्री थे, तो बचपन से ही उन्होंने वो समूह की भावना, एक साझा विश्वास की ताकत, उसे महसूस किया।
अच्छा, तो टीम वाली बात वहां से आई।
हाँ, कह सकते हैं कि उसकी नींव वहां पड़ी। फिर जब वो खुद एक खिलाड़ी थे, न्यूयॉर्क निक्स के लिए खेले, तो उन्होंने कोच रेड होल्ड्समैन के अंडर खेला और 2 चैंपियनशिप भी जीती।
हाँ,
होल्ड्समैन टीम फर्स्ट बास्केटबॉल पर जोर देते थे। जैक्सन मजाक में कहते थे कि वो बास्केटबॉल निर्वाण था, जहां टीम का भला सबसे ऊपर था, किसी एक खिलाड़ी की चमक से भी ज्यादा।
तो खिलाड़ी के तौर पर ही उन्होंने टीम की अहमियत समझ ली थी।
जी, और फिर जब उन्होंने कोचिंग शुरू की, पहले छोटी लीग्स में, तब उन्होंने अपने आइडियाज को टेस्ट करना शुरू किया। यहीं पर उन्होंने वो फेमस ट्राइंगल ऑफेंस डेवलप करना शुरू किया।
हाँ, ट्राइंगल ऑफेंस, इसके बारे में बहुत सुना है, ये क्या था असल में?
देखिए, ये कोई बहुत जटिल चीज नहीं थी, पर बहुत प्रभावी थी। मूल रूप से 3 खिलाड़ी एक त्रिकोण बनाते हैं, गेंद और अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। इससे होता यह है कि गेंद किसी एक के हाथ में नहीं रुकती, सबको मौके मिलते हैं और विरोधी टीम के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है।
मतलब टीम वर्क पर आधारित सिस्टम।
बिल्कुल, और इसी दौर में उन्होंने जेन और ध्यान को भी अपनी कोचिंग में लाना शुरू कर दिया था। छोटे स्तर पर ही सही, पर शुरुआत हो गई थी।
फिर आया शिकागो बुल्स का दौर और माइकल जॉर्डन। ये तो किसी भी कोच के लिए एक सपना भी रहा होगा और शायद एक बड़ी चुनौती भी।
बिल्कुल, चुनौती बहुत बड़ी थी। जॉर्डन उस समय तक भगवान का दर्जा पा चुके थे बास्केटबॉल में। वो अकेले ही खेल का रुख पलट देते थे।
हाँ, वो तो थे ही।
लेकिन जैक्सन का विजन था कि जॉर्डन के आसपास एक टीम बनाई जाए, ना कि सिर्फ जॉर्डन पर निर्भर रहा जाए। उन्हें मैं से हम की सोच तक लाना, उन्हें ट्राइंगल ऑफेंस जैसे सिस्टम पर भरोसा दिलाना, यह आसान नहीं था।
जॉर्डन को क्यों मुश्किल होती भरोसे में? उन्हें तो और मदद मिलती इससे।
देखिए, जॉर्डन को लगता था कि ये सिस्टम उनकी आज़ादी छीनेगा, उन्हें धीमा कर देगा। जैक्सन ने सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने जॉर्डन को समझाया कि ये सिस्टम उन्हें और खतरनाक बना देगा, क्योंकि विरोधी सिर्फ उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
और टीम में उन्होंने ध्यान वगैरह भी शुरू करवाया?
हाँ, उन्होंने टीम प्रैक्टिस में ध्यान को शामिल किया। और एक और दिलचस्प चीज़ की, उन्होंने मूल अमेरिकन लकोटा सियोक्स परंपरा के सीक्रेट हूप या पवित्र घेरे की बात की।
सेक्रेड हूप, वो क्या था?
वो टीम के गहरे आपसी जुड़ाव, एकता और हर सदस्य के महत्व का प्रतीक था। ये सब तरीके थे टीम को सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं बल्कि एक इकाई बनाने के।
और नतीजा सामने था, पहली थ्रीपीट 1991 से 93 तक, लगातार 3 चैंपियनशिप्स।
जी हाँ, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया, जॉर्डन ने रिटायरमेंट ले ली।
हाँ, वो बेसबॉल खेलने चले गए थे।
बिल्कुल, और फिर जॉर्डन वापस आए, लेकिन टीम को फिर से बनाना और इस बार डेनिस रॉडमन जैसे खिलाड़ी को संभालना, ये एक नई चुनौती थी।
ओ डेनिस रॉडमन, वो तो मतलब अपने आप में एक अलग ही कहानी थे। बहुत प्रतिभाशाली पर उतने ही विवादास्पद।
सही कहा, रॉडमन अनुशासनहीन थे, अप्रत्याशित थे। कोई दूसरा कोच शायद उन्हें टीम से निकाल देता, लेकिन जैक्सन ने अलग रास्ता चुना।
क्या किया उन्होंने?
उन्होंने रॉडमन को सजा देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जरूरतों को जाना। जैक्सन ने उन्हें थोड़ी ज्यादा छूट दी, ऐसी छूट जो शायद टीम के बाकी सदस्यों को नहीं मिलती थी।
लेकिन क्या इससे टीम का अनुशासन नहीं बिगड़ा?
ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन जैक्सन ने यह भांप लिया कि रॉडमन को अलग तरह की हैंडलिंग चाहिए। उन्होंने रॉडमन का विश्वास जीता और बदले में रॉडमन ने कोर्ट पर अपना सब कुछ झोंक दिया। ये जैक्सन की मतलब करुणा और मनोवैज्ञानिक समझ का सबूत था, और नतीजा
दूसरी थ्रीपीट 1996 से 98 तक कमाल है
जी। शिकागो के बाद वो गए लॉस एंजल्स लेकर्स, और वहां इंतजार कर रहे थे दो और बड़े सुपरस्टार, शकील ओनील और कोब्रे ब्रायंट।
शैक और कोबी, मतलब दो और विशाल ईगोज। ऐसा लगता है जैक्सन को मुश्किल काम ही पसंद थे।
हाँ, कह सकते हैं। शैक और कोबी के बीच का तनाव तो जग जाहिर था, दोनों ही टॉप पर रहना चाहते थे।
उसे कैसे संभाला जैक्सन ने?
यहाँ जैक्सन ने एक कोच से ज्यादा एक मध्यस्थ और मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों की महत्वाकांक्षाओं को समझा, उनसे अलग अलग बात की और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो एक दूसरे के बिना सफल नहीं हो सकते।
आसान नहीं रहा होगा ये।
बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने किसी तरह उन दोनों को टीम के साझा लक्ष्य के लिए एक साथ ला दिया, और नतीजा फिर वही, लेकर्स के साथ भी 2000 से 2002 तक एक और थ्रीपीट।
अविश्वसनीय। लेकिन जैसा आपने कहा, सफर हमेशा जीत का नहीं होता। 2004 में टीम हार गई और जैक्सन को जाना पड़ा।
हाँ, और जैक्सन खुद इसे विनम्रता का एक जरूरी सबक मानते हैं, हार भी सिखाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
वो वापस आए लेकर्स में
जी
कुछ साल बाद
जी,
और इस बार टीम में कोबी ब्रायंट थे जो अब ज्यादा परिपक्व हो चुके थे, और जैक्सन ने उनके साथ 2009 और 2010 में दो और चैंपियनशिप जीती,
तो कुल मिलाकर 11 रिंग्स।
पर जैसा आप कह रही हैं, उनकी विरासत सिर्फ इन जीतों में नहीं है।
नहीं, उनकी विरासत है उनके लीडरशिप के तरीके में, उनके सचेत दृष्टिकोण में और टीम बनाने की उनकी अनूठी कला में।
चलिए तो अब जरा उनके मूल दर्शन, उनके कोर प्रिंसिपल्स पर आते हैं। क्या थे वो मुख्य सिद्धांत जो उनकी सफलता के पीछे थे?
सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत था, अंदर से नेतृत्व करो।
लीड फ्रॉम द इनसाइड आउट।
अंदर से नेतृत्व, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं या टीम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को जानना होगा, आत्म जागरूक होना होगा। जैक्सन खुद नियमित रूप से ध्यान करते थे, खुद पर काम करते थे। वो मानते थे कि लीडर प्रामाणिक होना चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात है। दूसरा सिद्धांत आपने बताया था, सचेतनता की शक्ति, पावर ऑफ माइंडफुलनेस।
हाँ, माइंडफुलनेस ये आजकल बहुत सुनने में आता है, पर जैक्सन इसे सालों पहले इस्तेमाल कर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ तनाव कम करने का तरीका नहीं था।
तो फिर क्या था?
ये एक टूल था, एक हथियार, खासकर मैच के उन बेहद दबाव वाले पलों में टीम को एक साथ फोकस रखने के लिए। वो अक्सर कहते थे, वन ब्रेथ वन माइंड, यानी सब एक साथ सांस लें, एक ही सोच रखें, वर्तमान पल में रहें।
अच्छा, और ये भी सुना है कि वो कभी कभी टाइम आउट में चुप रहते थे।
हाँ, ये कमाल का तरीका था। वो चुप हो जाते थे ताकि खिलाड़ी खुद आपस में बात करें, समस्या का हल निकालें। ये उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाता था, ये वर्तमान क्षण में रहकर बिना घबराए स्थिति को संभालने का अभ्यास था।
तीसरा सिद्धांत, टीम एक पवित्र प्रणाली के रूप में। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है।
हाँ, और ये उनकी सोच का अहम हिस्सा था। ट्रायंगल ऑफेंस सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो इस बात का प्रतीक थी कि टीम का हर सदस्य महत्वपूर्ण है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने वो सेक्रेड हूप वाली बात की थी, वो भी यही दर्शाता था कि कबीले का या टीम का हर व्यक्ति जरूरी है। जब हर खिलाड़ी को लगता है कि उसकी भूमिका अहम है, तभी टीम सच में एक बनती है।
और रॉडमन वाले किस्से से जुड़ा है उनका अगला सिद्धांत, करुणा एक कोचिंग उपकरण के रूप में।
कंपैशन एज अ कोचिंग टूल।
लेकिन खेल में जहाँ इतनी प्रतिस्पर्धा है, वहाँ करुणा क्या ये कमजोरी नहीं मानी जाती?
ये बहुत अच्छा सवाल है। जैक्सन की करुणा का मतलब ये नहीं था कि नियम तोड़ दो या ढील दे दो। उनकी करुणा का मतलब था खिलाड़ी को एक इंसान के तौर पर समझने की कोशिश करना, उसकी परिस्थितियों को, उसकी चुनौतियों को समझना।
जैसे रॉडमैन के मामले में
समझा कि रॉडमैन को अपनी ऊर्जा निकालने के लिए और शायद थोड़ा ध्यान खींचने के लिए कुछ आज़ादी चाहिए। उन्होंने वो स्पेस दिया लेकिन सीमाएं भी तय रखीं। ये एक तरह से रणनीतिक सहानुभूति थी। इससे जो विश्वास बनता है वो सजा या डर से कहीं ज्यादा मजबूत होता है।
समझ गया। फिर है अहंकार को दिशा देना, नष्ट करना नहीं। चैनलिंग ईगो, नॉट डिस्ट्रॉइंग इट। ये बड़े स्टार्स जैसे जॉर्डन या कोबी के साथ कैसे काम करता था? उनका तो ईगो बहुत बड़ा था।
बिल्कुल, और जैक्सन ये जानते थे। उन्होंने उनकी ईगो को दबाने या खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुमकिन नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। उनकी जीतने की जो जिद थी वो ईगो से ही आती थी।
तो फिर क्या किया?
उन्होंने उस ईगो को सही दिशा दी। उन्होंने जॉर्डन और कोबी को दिखाया कि उनकी व्यक्तिगत महानता टीम की सफलता के जरिए और भी ज्यादा निखरेगी। ट्रायंगल ऑफेंस ने जॉर्डन को कैसे और प्रभावी बनाया ये उन्हें समझाया। ये ईगो को टीम के लक्ष्य से जोड़ने की कला थी, उसे नष्ट करने की नहीं।
और अगला सिद्धांत अदृश्य नेता, द इनविजिबल लीडर।
मतलब वो जानबूझकर स्पॉटलाइट से दूर रहते थे।
हाँ, कई बार उनका मानना था कि कोच का काम है सिस्टम बनाना, खिलाड़ियों को तैयार करना, उन्हें सशक्त बनाना और फिर उन्हें खेलने देना। वो हर छोटी बात पर निर्देश देने में यकीन नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि खिलाड़ी खुद सोचें, फैसले लें, जिम्मेदारी उठाएं। लीडरशिप टीम के अंदर से आए, सिर्फ कोच से नहीं। वो टाइम आउट में चुप रहना भी इसी का हिस्सा था।
और अंत में उनकी सबसे मशहूर बात, यात्रा ही नाम है, द जर्नी इज द रिवॉर्ड, या जैसा वो कहते थे, अंगूठी को भूल जाओ। ये कहना कितना मुश्किल होता होगा उस माहौल में जहां सब कुछ चैंपियनशिप जीतने पर टिकाओ।
बहुत मुश्किल। NBA में तो रिंग ही सब कुछ है, लेकिन जैक्सन का जोर हमेशा प्रक्रिया पर रहा, रोज की मेहनत पर, अभ्यास पर, टीम के आपसी तालमेल पर, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश पर।
उनका मानना था कि अगर प्रोसेस सही है तो नतीजा मिलेगा। हाँ, और अगर नतीजा न भी मिले तो भी वो जो साथ मिलकर सफर तय किया है, वो जो प्रयास किया है, वो अपने आप में एक इनाम है, एक सीख है। इस सोच ने खिलाड़ियों को नतीजे के दबाव से काफी हद तक मुक्त किया और उन्हें अपना सौभाग्य खेल खेलने में मदद की।
ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में इन्हें लागू करना, खासकर जॉर्डन, रॉडमैन, शैक, कोबी जैसे बड़े नामों के साथ, ये आसान नहीं रहा होगा। जरूर कुछ ऐसे खास पल आए होंगे जिन्होंने जैक्सन के तरीकों को परखा होगा।
हाँ बिल्कुल, उनकी यात्रा में ऐसे कई मोड़ आए। हम तीन ऐसे खास पलों की बात कर सकते हैं जो उनका दर्शन को और साफ करते हैं। पहला, जैसा हमने पहले जिक्र किया, माइकल जॉर्डन को ट्रायंगल ऑफेंस के लिए राजी करना।
हाँ, ये तो वाकई बड़ा मोड़ रहा होगा। दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी जो खुद ही मैच पलट देता था, उसे टीम सिस्टम के लिए मनाना।
बिल्कुल, जॉर्डन को शुरू में बहुत शक था। उन्हें लगा ये उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को सीमित कर देगा। जैक्सन ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने आंकड़ों से, वीडियो से, तर्कों से जॉर्डन को समझाया कि कैसे ये सिस्टम उन्हें और टीम दोनों को फायदा पहुंचाएगा। उन्हें कैसे कम थकना पड़ेगा, कैसे विरोधी टीम के लिए उन्हें रोकना और मुश्किल हो जाएगा।
और जब जॉर्डन मान गए
तो ये सिर्फ एक रणनीति की जीत नहीं थी, ये जैक्सन के टीम पहले वाले दर्शन की जीत थी। इसने साबित किया कि सिस्टम व्यक्ति से बड़ा हो सकता है अगर उसे सही तरीके से लागू किया जाए, और यहीं से पहली थ्रीपीट का रास्ता खुला। ये एक तरह से जैक्सन के तरीकों की पहली बड़ी पुष्टि थी।
दूसरा बड़ा मोड़ आप किससे मानेंगी?
मेरे ख्याल से डेनिस रॉडमैन को सफलतापूर्वक टीम में शामिल करना और संभालना। रॉडमैन एक पहेली थे, शानदार डिफेंसिव खिलाड़ी और रिबाउंडर, पर उतने ही अनुशासनहीन और ध्यान खींचने वाले।
हाँ, उनके रंगीन बाल, टैटू, मीडिया में उनके बयान, वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे।
बिल्कुल, ज्यादातर कोच उन्हें नियमों में बांधने की कोशिश करते और नाकाम रहते। जैक्सन ने उल्टा किया, उन्होंने रॉडमैन को समझने की कोशिश की, उनकी असुरक्षाएं, उनकी जरूरतें। उन्होंने महसूस किया कि रॉडमैन को नियमों से थोड़ी छूट चाहिए, उन्हें अपनी तरह से रहने की जगह चाहिए।
तो उन्होंने उन्हें छूट दी, टीम मीटिंग मिस करने दी।
हाँ, कुछ हद तक। ये बहुत बड़ा जुआ था, टीम के बाकी खिलाड़ी क्या सोचेंगे। लेकिन जैक्सन ने रॉडमैन से एक डील की, उन्हें कुछ आजादी मिलेगी लेकिन कोर्ट पर उन्हें अपना 100% देना होगा और टीम के लिए खेलना होगा। जैक्सन ने रॉडमैन का भरोसा जीता, उनकी वफादारी हासिल की, और रॉडमैन ने कोर्ट पर कमाल कर दिया।
तो ये दिखाता है कि कभी कभी नियमों से ज्यादा इंसान को समझना जरूरी होता है।
हाँ बिल्कुल, ये करुणा आधारित अपरंपरागत नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसने दिखाया कि हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हांका जा सकता।
और तीसरा निर्णायक मोड़, लेकर्स वाला दौर।
हाँ, लेकर्स में शकील ओनील और कोबी ब्रायंट की जोड़ी को संभालना, यह शायद उनके मनोवैज्ञानिक कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दो सुपरस्टार, दोनों अपने अपनी जगह बेस्ट, दोनों टीम के लीडर बनना चाहते थे और दोनों के बीच जबरदस्त टकराव था।
इसे कैसे मैनेज किया?
यहाँ जैक्सन ने कोच कम एक डिप्लोमेट और मनोवैज्ञानिक की भूमिका ज्यादा निभाई। उन्होंने दोनों से अलग अलग रिश्ते बनाए, उनकी बातें सुनी, उनके ईगोस को समझा। उन्होंने शैक को उनकी विरासत और टीम के केंद्र होने की याद दिलाई, तो कोबी को उनकी प्रतिभा को टीम के खेल में ढालने की चुनौती दी।
मतलब दोनों को साधा।
हाँ, एक तरह से उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता की, तनाव कम करने की कोशिश की और उन्हें बार बार टीम के साझा लक्ष्य चैंपियनशिप की याद दिलाई। ये बहुत ही नाजुक संतुलन था। इस बेहद अस्थिर माहौल में लगातार 3 चैंपियनशिप जीतना, ये जैक्सन की लीडरशिप और उनकी समझ का चरम था।
ये तीनों कहानियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट की बातें नहीं लगती, इनमें से बहुत कुछ तो हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होता है ना?
हाँ बिल्कुल, यही तो जैक्सन की किताब और उनके जीवन की प्रासंगिकता है। उनके सबक बहुत मानवीय हैं, सार्वभौमिक हैं। जैसे पहला सबक है दबाव का प्रबंधन, मैनेजिंग प्रेशर।
हाँ, आज की दुनिया में स्ट्रेस और प्रेशर तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है।
बिल्कुल, जैक्सन की जो माइंडफुलनेस तकनीकें थीं, वर्तमान पल में रहना, गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर सोचना, ये आज भी उतनी ही कारगर हैं। ये हमें अपने काम में, अपनी निजी जिंदगी में शांत रहने, बेहतर फैसले लेने और बर्नआउट से बचने में मदद कर सकती हैं।
और दूसरा सबक, टीम वर्क और सहयोग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ऑफिस में या किसी भी समूह में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग ईगोज होते हैं।
जैक्सन का तरीका यही सिखाता है कि सिर्फ अधिकार जताने या हुक्म चलाने से टीम नहीं बनती। लोगों को समझना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है, उन्हें यह महसूस कराना पड़ता है कि वो महत्वपूर्ण हैं। उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को टीम के लक्ष्यों से जोड़ना पड़ता है। ये तरीके किसी भी कॉर्पोरेट टीम, प्रोजेक्ट ग्रुप, यहां तक कि परिवार में भी बेहतर तालमेल और नतीजा ला सकते हैं।
तीसरा सबक, असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जैसे 2004 की हार के बाद जैक्सन ने ब्रेक लिया, उस पर सोचा।
जी, ये हमें याद दिलाता है कि हार अंत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और फिर से कोशिश करने का। जैक्सन ने अपनी गलतियों को माना, उनसे सीखा और फिर वापसी की। हम सभी गलतियां करते हैं, मुश्किल दौर से गुजरते हैं। जरूरी यह है कि हम उनसे क्या सबक लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं।
और आखिर में उद्देश्य खोजना, फाइंडिंग पर्पस। जैक्सन ने बास्केटबॉल को सिर्फ जीत हार का खेल नहीं माना।
नहीं, उन्होंने इसे एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास बना दिया, खुद को और टीम को लगातार बेहतर बनाने का एक जरिया। ये सोच हमें भी अपने काम या जीवन के लक्ष्यों को सिर्फ बाहरी नतीजों जैसे पैसा या पद से परे देखने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अपने काम से कुछ सीख रहे हैं? क्या हम कुछ सार्थक बना रहे हैं? क्या हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं? ये सवाल हमें ज्यादा संतोष दे सकते हैं।
बहुत खूब। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो वो कौन सी 3 मुख्य बातें या निष्कर्ष हैं जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं?
ठीक है, पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, एन इमोशनल इनसाइट, यह है कि सच्ची समझ, सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जैसा जैक्सन ने रॉडमैन जैसे खिलाड़ियों को महसूस कराया, असाधारण नतीजे दे सकती हैं। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वो सिर्फ अपना बेस्ट ही नहीं देते, बल्कि अपनी छिपी हुई क्षमता को भी बाहर लाते हैं। विश्वास और मानवीय जुड़ाव किसी भी सफल समूह की असली नींव है।
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
वो ये है कि महान टीमें सिर्फ अच्छी रणनीति जैसे ट्रायंगल ऑफेंस या सिर्फ अच्छी मानसिकता जैसे माइंडफुलनेस से नहीं बनती। असली जादू तब होता है जब आप सचेत नेतृत्व, वर्तमान पर ध्यान, गहरी समझ को प्रणालीगत सोच एक इफेक्टिव सिस्टम के साथ मिलाते हैं। ये संयोजन टीमों को न सिर्फ उच्च प्रदर्शन करने वाला बनाता है, बल्कि उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने में भी मदद करता है। ये दिमाग और दिल का, रणनीति और मनोविज्ञान का संतुलन है।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि।
वो शायद जैक्सन का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। असली खुशी और संतुष्टि सिर्फ मंजिल पर पहुंचने या रिंग जीतने में नहीं है, बल्कि वो उस पूरी यात्रा में है। वो रोज की मेहनत, वो साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना, वो एक दूसरे का साथ देना और उस प्रक्रिया में उत्कृष्टता पाने की कोशिश करना, यात्रा ही इनाम है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सब अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में अपना सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा, यात्रा ही इनाम है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।